भिलाई वर्कशॉप, भिलाई वर्कशॉप राजस्थानी नाट्य शिविर के ठाकुर प्रीतिपाल सिंह के बाद नवंबर दिसंबर 1974 में मैं भिलाई में बैठा बहुतेरी छत्तीसगढ़ी नाचा मंडलियों के साथ एक महीने तक काम करता रहा। हमेशा की तरह नया थिएटर के कुछ कलाकार भी मेरे साथ थे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य कुछ और था, अच्छी मंडलियों की तलाश, फिर उनके अच्छे खेलों को छाटकर मांजना और उन्हें मंच पर प्रस्तुत करना। चोरी की कहानी, जिसका शीर्षक विजय दान ने अपनी हिंदी किताब उलझन में सच्चाई की बिसात रख छोड़ा था, मुझे अंदर ही अंदर सताती रही थी। चुनाच, जब मेरा असली काम कोई 3 हफ्तों में पूरा होता नजर आया तो मैंने आखिर के 4-5 दिन इसी कहानी पर कुछ तजुर्बे कलाकार की मदद से करने में लगा दिए। वर्कशॉप के पांचों नाटक मेरे बालोद में प्रस्तुत करने के बाद जब दूसरी बार कोई 18,000 आदमियों के सामने खुले मंच पर भिलाई में वही नाटक खेले जाने लगे, पेज 10, और सुबह होने को आई तो मैंने दर्शकों से कहा कि हम एक नया नाटक तैयार करने जा रहे हैं, अभी ये दिमाग के कारखाने से पूरी तरह नहीं निकला है और न एक्टरों की तैयारी अभी पूरी हुई है। फिर भी ये देखते हुए कि इस मंचन की आयोजक एक सतनामी संस्था है और यहाँ सतनामी दर्शक हजारों की संख्या में जमा है और हमारे नाटक का आधार सतनाम धर्म है, अगर आप कहें तो हम इस अधपके नाटक को भी अभी प्रस्तुत कर दें। सबने एक आवाज होकर कहा, हो जरूर दिखाओ, हम मन ला कोई जल्दी नहीं है, अभी भोर कहाँ हुए हैं। विजय दान ने अपनी कहानी में चोर को कोई नाम नहीं दिया है। हम नाम सोचने लगे, पहले सोचा चोर मरने के बाद अमर हो जाता है, क्यों न उसका नाम अमरदास रखे। पंथियों ने कहा, ये नाम नहीं हो सकता, अमरदास नाम के हमारे एक गुरु गुजरे हैं, हमने दूसरा नाम तवीज किया, ये दूसरे गुरु का नाम निकला, आखिर हमने भिलाई के शो के लिए चोर चोर नाम रख दिया और आगे चलकर चरण दास रख लिया। नाचा पार्टियों में हमारे पास वर्कशॉप में धमतरी के अछोटा गांव की नाचा पार्टी भी थी, उसके लीडर थे राम लाल निर्मलकर, अच्छे कॉमिक एक्टर थे। उसने कहा, चोर की भूमिका में खड़े हो जाओ। मैंने दर्शकों से कहा, हो सकता है कि बीच में उठकर मुझे किसी अभिनेता की जगह ठीक करना पड़े या संवाद में मदद करना पड़े, तो आप लोग कृपया इस बात को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बिल्कुल यही हुआ, मुझे न सिर्फ एकाध बार उठकर किसी सैनिक की मंच पर जगह ठीक करनी पड़ी, क्योंकि आगे चलकर इसके कारण सीन में बाधा पड़ने का अंदेशा था, बल्कि बीच बीच में ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठकर खुद गाने भी गाता रहा। गाने उस वक्त तक लिखे नहीं गए थे, मैंने पंथी गीत की एक छोटी सी पुस्तक अपने पास रख ली थी। साजिंदे हमारे अपने हमारे साथ थे ही, बस में गाता रहा, कोरस में गाने वाले कलाकार दोहराते रहे और इस तरह कोई 45-50 मिनट में नाटक समाप्त हुआ तो मैदान तारीफ और तालियों से देर तक गूंजता रहा। मुझे दर्शकों की राय मिल गई थी, उन्होंने नाटक को अपनी कच्ची शैली और बाकी सब कमजोरियों के बावजूद पसंद कर लिया था। दर्शकों में सभी लोग पंथी थे और पंथियों का बुनियादी वसूल है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, पेज 11। यही उसूल उनके रोजमर्रा के पारंपरिक गीत में भी है और उसी गीत पर हमने नाटक खत्म किया था। बस ये सब देख सुनकर उनकी भावुकता उबल पड़ी थी। इस भावुकता का एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हीं के पंथ का एक व्यक्ति नाटक का नायक था, जिसे नाटकों में पहले कभी नहीं देखा गया था। पंथ की स्थापना से पहले गुरु घासीदास स्वयं एक डाकू थे। शूद्र वर्ग के लोगों ने सतनामी धर्म अपनाया, जो उन्होंने समाज में उनकी आत्महीनता दूर करने के लिए उन्हें जनेऊ पहनने का आदेश दिया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज तक उनका मुकाम गांव के बाहर है। उनका कुआं, उनका पानी समाज से अलग है। उन्हीं कारणों से सतनामियों में अपने धर्म के प्रति होश होता है। वे अपनी सुरक्षा के लिए लाठी चलाने में भी निपुण होते हैं, और जहाँ तक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संबंध है, तो इतिहास सैकड़ों साल से उनके आंदोलनों, उनके संघर्षों से भरा पड़ा है। हेडिंग: नाटक से पहले, नाटक से पहले। भिलाई वर्कशॉप से कुछ महीना पहले जब हम अपने नाटक गांव के नाव, ससुरार मोर नाव दामाद के गांव गांव शो करते फिर रहे थे, तो उस वक्त श्याम बेनेगल अपने अमले के साथ, जिसमें गिरीश घानेकर कैमरा पर थे, नया थिएटर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में लगे हुए थे। मैंने चोर की राजस्थानी कहानी के आधार पर नाटक तैयार करने की अपनी योजना उन्हें बताई। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि उस कहानी पर एक फीचर फिल्म बनाएंगे। ये घानेकर वही थे जिनके पिता के साथ मैं सन 1945 से 48 में फेमस पिक्चर्स स्टूडियो में विज्ञापन की फिल्में बना चुका था। आगे चलकर गिरीश खुद अपने डायरेक्शन में फिल्में बनाने लगे थे। श्याम ने मुझसे स्क्रीन प्ले लिखने के लिए कहा। फिल्म वह बना रहे थे चिल्ड्रेंस फिल्म सोसाइटी की तरफ से, बच्चों के लिए चुनौत। उन्हें कहानी का अंत पसंद नहीं था। चोर के मरने पर वह फिल्म खत्म नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि बच्चों के लिए कहानी का ये अंत उचित नहीं। उन्होंने कहा कि चोर के मरने के बाद परलोक का एक सीन और लिखो, ताकि इस दुखद अंत के बजाय चोर की कहानी आखिर एक प्रहसन बनी रहे। बच्चों के साहित्य के विषय में मेरी कुछ और राय थी। मेरी राय में बहुतेरी भयानक कहानियां बच्चे मजे लेकर सुनते और पढ़ते हैं, और उनसे कोई खराब असर कबूल नहीं करते। बहरहाल मैंने फिल्म के लिए परलोक का एक सीन भी लिख लिया, पेज 12, जिसमें मरने के बाद चरणदास चित्रगुप्त के सामने पहुंचता है और उसके खाते से अपना नाम चुपके से फाड़ लेता है। जब चित्रगुप्त अपने खाते का पन्ना गायब देखकर चरणदास पर शक की नज़र डालते हैं, तो वह उस कागज़ को पान की तरह लपेट कर मुंह में रख लेता है। चित्रगुप्त उसे मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहते हैं, तो चरणदास कागज़ को निगल लेता है। लाचार चित्रगुप्त चरणदास का नाम अपने खाते में न पाकर कहते हैं, तुमको यमराज ने क्यों मारा? तुम्हारा नाम तो मेरे खाते में नहीं है। इतने में अपने भैंसे पर सवार स्वयं यमराज पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने वाहन से उतरते हैं, चरणदास उनके भैंस पर चढ़कर चंपत हो जाता है। शाम के बादल आकाश पर मंडराते नजर आते हैं। कमेंट्री के शब्द जो सुनने में आते हैं वे ये हैं, बच्चों वह जो बादल तुम देख रहे हो वह दरअसल चरणदास चोर है, जो यमराज के भैंसे पर सवार भाग रहा है। उसके पीछे आसमानी पुलिस है जो अब तक उसका पीछा कर रही है। बस यहाँ फिल्म समाप्त होती है। श्याम ने चोर के पार्ट के लिए लालू राम को चुना। मैं चौंका क्योंकि मेरी नज़र में मदन लाल इस भूमिका के लिए ज़्यादा मुनासिब थे। बहरहाल फिल्म के डायरेक्टर श्याम थे, मेरे दोस्त थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी और है। मैं जानता था कि सिनेमा मीडियम बेहतर जानते हैं। लालू राम की शक्ल कैमरा के लिए उन्हें ज़्यादा मुनासिब लगी होगी। फिर ये बात भी है कि मंच की बनी अस्बत फिल्म में चेहरे का महत्व ज़्यादा है। लालू राम काले थे, गिट्ठे थे और तिरपर थे। बस श्याम को उनका ये असाधारण चेहरा चोर के लिए जच गया होगा। आखिर वो उन डायरेक्टरों में तो हैं नहीं जो हीरो के लिए खूबसूरत चेहरे, चॉकलेट फेस की तलाश में फिरा करते हैं। फिर फिल्म और स्टेज की एक्टिंग में कुछ फर्क भी है। फिल्म की भाषा अलग है, उसके माध्यम का संबंध छाया से ज़्यादा है और शब्द से कम। चुनांच एक्टर न होते हुए भी आदमी फिल्म में सफलतापूर्वक काम कर सकता है। बस आदमी बेबाक हो और उसका चेहरा मोबाइल हो। इस मामले में स्टेज के लवाजमात कुछ ज़्यादा हैं। बहरहाल लालू राम ईमानदार चोर और मदन लाल चोर के ईमानदार दोस्त के लिए चुन लिए गए। श्याम को फिल्म के लिए हीरो के लिए एक साथी फॉयल की ज़रूरत थी, यानी चोर की सच्चाई की आबोताब दोस्त के झूठ और दगा को देखते हुए कुछ और बढ़ जाए। स्टेज के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, जिसकी एक वजह यह भी थी कि स्टेज का मीडियम एक्टर हो इजाज़त देता है कि वो खुद अपना परिचय और अपने इरादों का परिचय सीधे दर्शकों से संबोधित होकर दे दे। चुनांच मैंने नाटक में से फिल्म के इस पात्र को काट दिया। फिल्म में स्मिता पाटिल ने रानी का पार्ट अदा किया, जो उस वक्त पूरा फिल्म एकेडमी से निकली थी। फिल्मों में ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी तरह दासी का पार्ट भी एकेडमी की ही एक नौजवान लड़की ने अदा किया। फिदा बाई, जो रानी की भूमिका के लिए नाटक में चुनी गई थी, उन्होंने फिल्म में छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी की एक नर्तकी और गायिका का पार्ट अदा किया। वैसे ही माला बाई, जो नाटक में दासी बनी थी, फिल्म में नाचा पार्टी की गायिका बनी। फिल्म और नाटक दोनों में ठाकुर रामगुरु और बाबूदास बघेल हवलदार बने। नया थिएटर के दीगर कलाकारों ने फिल्म में हिस्सा जरूर लिया, लेकिन कुछ नए सीन जो फिल्म में थे और नाटक से निकाल दिए गए थे, उनमें छोटी छोटी नई भूमिकाएं निभाई। कैमरा पर गोविंद निगहलानी थे, जो पहले कैमरामैन और आगे चलकर डायरेक्टर की हैसियत से मशहूर हुए।